ओम शांति। यात्रियों का एक दल एक बार एक लंबी यात्रा करते हुए समुद्र के किनारे पहुंच रहा था। ये सभी वो यात्री थे जो कि साहूकार थे, जिनके पास बहुत धन था और बहुत धन कमाकर ये सभी यात्री अब वापस यात्रा से लौट रहे थे, जिस नाव में वो सवार थे वो नाव अब जमीन पर पहुंचने ही वाला था। एक ही दिन बाकी था। उस नाव में उनके साथ एक फकीर भी था, जिसने उनसे कहा था कि मुझे भी अपने देश जाना है, मुझे भी ले चलो। तो वो सभी यात्रियों ने उसे भी ले लिया था। नाव जो थी अब जमीन पर पहुंचने ही वाली थी। एक ही दिन बचा था कि अचानक मौसम बिगड़ा। एक ही दिन बचा था कि बादल गरजने लगे, सूरज ढक गया, अंधेरा सा छा गया, नाव में समुद्र में तूफान आने लगा और समुद्र का पानी नाव में घुसने लगा। सभी यात्री घबराए, डर गए और सभी अपने घुटनों के बल हुए, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, कहाँ हो, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। और तो और उस फकीर से भी कहने लगे कि क्या तुम्हें प्रार्थना नहीं करनी। वो फकीर कहने लगा कि मैं तो नहीं करूंगा, आप करते रहो। तो सभी यात्री थोड़ी ही देर में बड़े बड़े वायदे करने लगे, हे प्रभु, हमें बस जमीन पर पहुंचा दो। अगर इस बार जमीन पर पहुंचा दिया तो हम ये करेंगे। अगर मैं बच गया तो जितनी धन संपत्ति है सब गरीबों में बांट देंगे। किसी ने कहा, मेरे पास जो भी है सबसे मंदिर बनवाऊंगा, बस मुझे बचा लो। और इस तरह सभी, कोई आंखें बंद कर, कोई आकाश की तरफ देखकर, कोई घुटनों के बल होकर प्रार्थना कर रहे थे। उस फकीर ने कहा, रुको रुको, और अधिक वायदे मत करना, देखो जमीन सामने है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो सभी ने देखा कि जमीन तो सामने है और मौसम भी ठीक होने लगा है। तो फटाफट सभी अपनी बैग, अपना सामान ठीक करने में लग जाते हैं। परंतु उसमें से एक व्यक्ति होता है जो कि उस शहर का सबसे बड़ा धनपति होता है, और उसने जो प्रार्थना की थी वो पूरी हो गई थी और सभी ने वो सुन ली थी। और बाकी सभी ने जो प्रार्थना की थी वो तो आधी आधी में रह गई थी और उन्होंने वहीं उसको पूरा कर दिया था। और उस धनपति ने यह प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मुझे बचा लो। यदि मैं बच गया, यदि मैं जमीन पर सुरक्षित पहुंच गया तो मेरा जो बड़ा इतना घर है लाखों का, उसे बेचकर जो भी पैसा मिलेगा वो सभी मैं गरीबों में बांट दूंगा। और उसकी ये प्रार्थना बाकी सभी ने सुन ली थी। उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, अब क्या किया जाए, क्योंकि उसने जो कहा था उसे पूरा तो करना पड़ेगा और सभी ने प्रार्थना सुनी है। और वो सुरक्षित बच गया है। नाव जमीन पर आई। उस फकीर ने कहा, इस धनपति को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुछ तो ये जरूर करेगा। इतनी आसानी से अपना लाखों का घर इस तरह बेचकर गरीबों में नहीं बांटेगा। 15 दिन के बाद ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि जो धनपति है वो अपना मकान बेच रहा है और उससे जो भी पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे गरीबों में बांट दिए जाते हैं। सारा गांव, सारा शहर उस घर के पास, लगभग 1 करोड़ उस घर की कीमत होती है। इतना आलीशान, इतना भव्य वह भवन था। परंतु वो साहूकार, वो सौदागर बाहर निकला और उसने साथ में एक बिल्ली ले आई और उस बिल्ली को दरवाजे से बांधा और उसने कहा कि अगर घर तो मैं बेच रहा हूं, जो भी खरीदना चाहे खरीदे, पर साथ में बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। बिल्ली की कीमत है 1 करोड़ और घर की कीमत है 10 रुपया। बिल्ली की कीमत 1 करोड़ और घर की कीमत 10 रुपया। दोनों को साथ में खरीदना पड़ेगा। लोगों ने पूछा, अगर बिल्ली की कीमत, हमें बिल्ली नहीं चाहिए, केवल घर चाहिए। उसने कहा, नहीं, दोनों साथ में खरीदना पड़ेगा। तो उस भीड़ में से किसी ने बिल्ली और घर दोनों खरीद लिए। उस साहूकार ने घर की जो कीमत थी 10 रुपया अपने खीसे में डाले और फिर वहां पर बहुत सारे गरीब भिखारी थे, उनमें वो 10 रुपए बांट दिए। क्योंकि घर की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। मनुष्य का मन बहुत चालाक है। मनुष्य का मन इतना सहज और इतना सरल नहीं है। किसी से भी वायदा तो कर लेता है, परंतु क्या होता है फिर, उसमें भी चालाकी करता है। यदि वो वायदा भगवान से ही क्यों ना किया जाए, यदि भगवान से भी कोई वायदा करता है उसमें भी क्या करता है? चालाकी। उसमें भी क्या करता है? होशियारी, चतुराई। तुम भी भगवान से सौदा करते हो और उसमें क्या करते हो फिर? क्या करते हो? तुम भी भगवान से वायदा करते हो, सौदा करते हो और फिर उसमें क्या कर देते हो? चतुराई करते हो। कौन सी चतुराई करते हो? थोड़ा थोड़ा देंगे, धीरे धीरे देंगे, किश्तों में देंगे, टुकड़ा टुकड़ा करके देंगे। किस सौदे की बात कर रहे हैं भगवान? किस सौदे की चर्चा है आज की मुरली में? ये सौदा दिल का सौदा है। इस सौदे की क्या विशेषता है? माताओं की तरफ से ये कैसा सौदा है? इस सौदे की क्या विशेषता है? आत्मा और परमात्मा के बीच में जो सौदा हो रहा है, उस सौदे की विशेषता क्या है? ये देना नहीं है, ये लेना है। तुम देते क्या हो? लोहा देते हो और हीरा लेते हो। एक दूसरा 10 पॉइंट बताओ, इस सौदे की विशेषता क्या है? फटाफट। कौड़ी देते हो, पदम लेते हो, ये आज की मुरली का नहीं है, पहले आज की मुरली का बताना है। ये कितना श्रेष्ठ सौदा है, ये कितना सस्ता सौदा है। इस सौदे में स्नेह में, इस सौदे में स्नेह समाया है और भाइयों की तरफ से ये सौदा कैसा है? कैसा है क्या? प्रेम, प्रेम का सौदा। और सौदे के दो प्रकार गिनाए हैं बाबा ने, एक तो पूरा सौदा और दूसरा अधूरा किश्तों वाला टुकड़े टुकड़े वाला सौदा। पूरा सौदा अर्थात ढक से सब कुछ दे देना, सोचा और दिया, सोचा और किया, ढक से दे देना, यह है पूरा सौदा। और जो पूरा सौदा करते हैं वो क्या बन जाते हैं? एक रस। वो क्या बन जाते हैं? नंबर वन। और जो अधूरा सौदा करते हैं वो, उन्हें क्या हो जाता है? आज क्या करते हैं और कल क्या करते हैं वो? आज अपनी दिल अपने आप से हटाते हैं और बाप से लगाते हैं, और कल फिर मित्र संबंधियों से दिल हटाते हैं फिर बाप से लगाते हैं, और फिर तीसरे दिन क्या करते हैं? दो ही दिन की बताइए पापा ने बातें, व्यक्ति वस्तु साधन संसार की बातें, संसार की आसक्तियां। जिसकी आसक्ति संसार से है वो भगवान से आसक्ति कैसे हो सकती है? जिसकी अनुरक्ति संसार के वैभव से है वो उस परमात्म वैभव को कैसे प्राप्त कर सकता है? जो इस धरती को जिन्होंने पकड़ रखा है वो आकाश से परे रहने वाले को कैसे पकड़ेगा? जिनका रस रूप में है वो उस अरूप को कैसे जानेगा? जिसे संसार ही प्रिय है वो उस संसार से परे रहने वाले से प्यार कैसे करेगा? इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि इस संसार में कभी भी कहीं पर भी कोई भी सुख नहीं है, यह अध्यात्म की शुरुआत है। इस संसार से, इस संसार की योजनाओं से, इस संसार के वैभवों से, इस संसार के साधनों से सुख प्राप्त करना उसी चेष्टा की तरह है जैसे कोई रेत को निचोड़ रहा है तेल की आकांक्षा में। क्या रेत को निचोड़कर तेल को प्राप्त किया जा सकता है? उसी तरह क्या इस संसार से सुख प्राप्त हो सकता है? नाम ही दुखधाम है, और दुखधाम में जिनकी आसक्ति है और अनुरक्ति है, और दुखधाम में ही जिनका सर्वस्व है और सब कुछ है, वह उस परमानंद को कैसे उपलब्ध हो सकेगा? तो ये सच्चा, ये सौदा कैसा है? ये दिल का सौदा है। ये किससे सौदा कर रहे हैं? दिलाराम से सौदा कर रहे हैं। ये सौदा इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सौदा है। ये सौदा करने के बाद इस संसार के और किसी सौदे को करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे सस्ता और सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्रतम सौदा है ये। परंतु क्या करते हैं? अपूर्ण सौदा करते। पूरा सौदा तो पूरा अधिकार, सौदा पूरा नहीं करते। और फिर क्या होती है? कंप्लेंट्स, उल्हाने। कौन कौन से उल्हाने? ये कारण था। कौन कौन से उल्हाने? ये परिस्थिति थी। कौन कौन से उल्हाने? मैं पहले आया होता तो। तो आज कौन किसको देख रहा है? ज्ञान सागर ज्ञान रत्नों को देख रहा है, दिल तख्त नशीन बच्चों को देख रहा है। तो आज ये मेला किसका है? ये मिलन मेला है। ज्ञान का सागर एक तरफ है तो दूसरी तरफ ज्ञान गंगाए है। इनका ये स्नेह का मिलन है। सभी आत्माएं कैसी है? स्नेही आत्माएं हैं। ये मिलन से कौन हर्षित हो रहा है? दोनों ही हर्षित हो रहे, जो मिलने आया है वह भी और जो मिल रहे हैं वो भी। सभी स्नेही है। सभी स्नेही होते हुए भी उसमें भी तीन कैटेगरीज बाबा ने गिनाई है। कौन कौन सी? स्नेही सभी है, सबका प्यार है, परंतु उसमें भी नंबरवार है। वो कौन सी तीन प्रकार की आत्माएं हैं? और उसमें ये देखना है कि मैं किस श्रेणी में हूं। कौन कौन सी? एक तो पहले जो समाये हुए है, जो लवलीन है, जो स्मृति स्वरूप है, ऐसी स्मृति स्वरूप, ऐसी स्नेही, ऐसी लवलीन, ऐसी सागर में समाई हुई आत्माएं। एक दूसरा जो यथाशक्ति अनुभव कर रही है, पूरा अनुभव नहीं है परंतु जिसकी जितनी शक्ति है उस शक्ति अनुसार अनुभव करने वाली आत्माएं, और ऐसी आत्माएं पूर्ण रूप से खोई हुई, समाई हुई, मर्ज्ड नहीं है। और तीसरे प्रकार की आत्माएं समझ रही है किसको, किसको समझने का प्रयत्न कर रही है, समझ रही है या समझने का प्रयत्न कर रही है, किसको, किसको समझने का प्रयत्न कर रही है? इस मिलन के आनंद को, रूहानी रूह का मिलन हुआ है, सभी झूल रहे सुख के, स्नेह के, प्रेम के, आनंद के झूले में, ऐसी पहचानी हुई आत्माएं बुद्धि के योग द्वारा जान लिया है, पहचान लिया है। पुरानी पहचान है, ये वही बाप है और हम वही आत्माएं हैं। तो मैं कहां हूं? खोई हुई हूं, समाई हुई हूं। डायमंड हॉल का वह दृश्य याद करना है, बाबा आया है, हम बैठे हुए हैं, कौन सी स्थिति है, समाये हुए हैं, लवलीन है, स्मृति स्वरूप है, स्नेही है, क्या है? कि दूसरा नंबर यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, सदा नहीं हो रहा है। आगे मुरली में बाबा ने कहा है परिणाम। तो और तीसरे प्रकार की आत्माएं क्या कर रही है? अनुभव से तो बहुत दूर है, खोई हुई अवस्था भी नहीं है। कौन सी अवस्था है? तर्क की अवस्था है। बुद्धि से तर्क कर रही है, सोच रही है, समझने का प्रयत्न कर रही है, और उसी में समय जा रहा है। जबकि एक एक सेकंड मिलन का है, एक एक सेकंड आज का वरदान परमात्मा दुआओं से झोली भरने का है। तो जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी बाबा ने क्या कहा, उनके लिए भी एक आशावादी दृष्टिकोण बाबा ने दिया है। वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समा जाएगी, और समाते समाते समान बन जाएगी। तो कोई कोई समान बनने में कहां पर ज्यादा अंतर है, कहां पर कम अंतर है, उस अंतर को मिटाने की विधि क्या है? एक मंत्र। कौन सा मंत्र? मन मना भव। क्या करना है? इस मंत्र का जाप, माला लेकर 108 बार, कितनी बार जाप करेंगे? मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव। क्या करेंगे? मंत्र का तो जाप करना होता है ना। क्या कहा बाबा ने, क्या करना है मंत्र का? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, 108 बार, 1108 बार, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। क्या करना है? हर सेकंड और हर संकल्प में स्वरूप मिलाना है। हर दिन हम सुनते हैं ये बात, मन मना भाव, मत भक्ता, मध्याजी, माम नमस्करु, ममे व वैश्यसी, सत्य में प्रतितानी प्रियोसी में। गीता का यह श्लोक 18वां अध्याय में आता है, जब भगवान कह रहे अर्जुन से, हे अर्जुन, मन मना भव, मध्याजी भव, मत भक्ता, माम नमस्करु। केवल मेरा स्मरण कर, केवल मेरे प्रति समर्पण भाव, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतितानी मैं, यह सत्य मैं कहता हूं कि क्यों तुमसे ये कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रियोसी में, तुम मेरे अति प्रिय हो, सब तरफ से अपने मन को हटाकर मुझ में लगा। मध्याचि भव माम नमस्कुरु। तो अंतर जो है उसको मिटाने की विधि क्या है, मंत्र अ जपा जाप, निरंतर उसकी याद में रहना, निरंतर उसके स्मरण में रहना, अपना समय व्यर्थ न गवाना। क्या हम करें कि ज्यादा से ज्यादा समय केवल उसी की याद रहे। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये परिभाषा दी है तपस्या की। खजाने सबको समान दिए हैं, प्रॉपर्टी कैसी है, बेहद की है, अखूट है, फिर भी नंबरवार। ऐसा नहीं कि जो आज आया और जो पहले आया, ऐसा नहीं है। चाहे कोई कितना भी पहले आया हो, जो अभी आया वो भी आगे जा सकता है। ये खजाना कभी खुटने वाला नहीं है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद कहते हैं वो जो है वो संपूर्ण है, उस संपूर्ण में से संपूर्ण यदि निकाल लिया जाए तो जो बचेगा वो भी संपूर्ण है। पूर्णमेवावशिष्यते, वो कभी खाली हो नहीं सकता। तो ऐसा वो जो पूर्ण है, ऐसा वो जो संपूर्ण है, जो ऐसा जो बेहद का है, वो जो देता है वो भी बेहद का ही है, और सबके लिए समान अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं लेट आया हूं, अभी भी जितना चाहो ले सकते हो। तो क्या लेना है, बेहद की प्रॉपर्टी लेनी है। इस मुरली में बाबा ने उस दिल तख्त की बात की है, सारी चर्चा इस तख्त के ऊपर है। कैसा तख्त है ये, कैसा तख्त है ये, इस तख्त की विशेषता क्या है। इतिहास में वर्णन है सम्राट विक्रमादित्य का वह सिंहासन, सुना होगा सभी ने, सिंहासन 32। राजा भोज बार बार चढ़ता है, परंतु वो 32 पुतलियां अलग अलग जिनके नाम होते हैं जीवंत हो जाती है। और एक कहानी सुनाती है कि ऐसा राजा विक्रमादित्य था, पराक्रमी शूरवीर, ऐसा दयावान, ऐसा दानवीर। क्या ये गुण तुम में है, यदि है तो ही चढ़ना। और वो हर बार पीछे हटता है। इतिहास में गायन है विक्रमादित्य का वह सिंहासन, उसमें बैठने के लिए ही इतनी सारी बातें थी कि वो चढ़ नहीं पाया। ये कौन सा सिंहासन है, ये परमात्म हृदय सिंहासन है, परमात्म दिल तख्त है। तो इस तख्त की क्या विशेषताएं हैं, ये तख्त कैसा है, बेहद का है। ये तख्त कैसा है, बहुत बड़ा है। ये तख्त कैसा है, माधव की तरफ से फटाफट बताओ। विश्व की सारी आत्माएं इसमें समा सकती है, इतना बड़ा ये तख्त है। और ये तख्त कैसा है, ये तख्त कैसा है, जिस पर बैठना है उसकी अगर जानकारी नहीं तो बैठेंगे कैसे, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना। ये तख्त कैसा है, ये संपूर्ण पवित्र तख्त है। एक मुरली में वरदान था, ये तख्त इतना पवित्र है कि इस तख्त पर बैठने वाले भी उतने ही पवित्र चाहिए। यदि हृदय में पवित्रता नहीं, यदि बार बार पवित्रता का खंडन है, जहां पर संपूर्ण अखंडित पवित्रता नहीं, ऐसी आत्माएं इस तख्त पर यदि बैठ जाए तो उनको भी लज जाएगी, इतना प्योर, इतना शुद्ध, इतना पवित्रतम यह तख्त है। और इस तख्त पर केवल बाप पर बाप समान आत्मा ही बैठ सकती है। बाप समान बनना अर्थात ही दिल तख्त नशीन होना, आज की मुरली में कहा है। इस तख्त की विशेषता है, सभी बुद्धि दौड़ाएंगे थोड़ी सी ताकि चर्चा हो सके और भाषण न रह जाए। जो अकाल तख्त पर बैठता है वही इस परमात्मा हृदय तख्त पर बैठ सकता है और इस तख्त पर सारा दिन बैठ सकते। एक मुरली में वरदान था, इस तख्त पर तुम बैठ सकते हो, उठ सकते हो, सो सकते हो, गा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, चल सकते हो, फिर सकते हो, सब खेल सकते हो, सब कुछ इस तख्त पर बैठकर किया जाता है। इतना विशाल, इतना पवित्रतम, इतना शुद्ध, इतना श्रेष्ठ बृहद यह तख्त है। और यह तख्त कैसा है? अविनाशी है। और यह तख्त कैसा है? फटाफट बताओ, या तो नंबर से चालू करेंगे नहीं तो फिर। ये तख्त कैसा है? ये तख्त क्या? ये तख्त पर बैठने के बाद में माया आक्रमण नहीं कर सकती, सेफ रहेंगे। ये सेफ्टी का साधन है। इस तख्त पर बैठकर कोई भी कुविचार, व्यर्थ विचार, व्यर्थ संकल्प, पुराने संस्कार, स्वभाव आक्रमण नहीं कर सकते। कोई इस तख्त से कोई उतार नहीं सकता। उतर तो जाते हैं पर ठीक से बैठते नहीं, इसलिए खिसक जाते हैं। और यह तख्त कैसा है? ये केवल केवल और केवल संगम युग पर इस तख्त पर बैठ सकते हैं। और इस तख्त पर बैठने का केवल अधिकार तुमको है। इस तख्त पर इस संसार की कोई भी आत्मा नहीं बैठ सकती। महान योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि, तीर्थंकर, इमाम, शंकराचार्य, पैगंबर, तीर्थंकर, पयंबर, बुद्ध, कोई नहीं बैठ सकता इस तख्त पर। कोई मसीहा इसमें नहीं बैठ सकता। तुम केवल और तुम बैठ सकते हो। और इस तख्त की विशेषता, अतीन्द्रियत्व पाना है तो इस तख्त पर चले जाओ। और इस तख्त की विशेषता पीछे से, इस तख्त में क्या विशेषता है? ये तख्त पर बैठेंगे तो ही भविष्य तख्त नशीन बन सकेंगे। अगर यदि परमात्मा के हृदय सिंहासन अब हम विराजमान नहीं, तो तब भी विराजमान उस तख्त पर नहीं हो सकते। और इस तख्त पर बैठेंगे तो धर्मराज के तख्ते पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। और ये तख्त कैसा है? सबसे सुंदर है, सबसे सेफ है, सबसे निराला है, सबसे अनूठा है, सबसे अद्वितीय है, सबसे यूनिक है, अनुकरणीय है, परम है, उच्च है, श्रेष्ठ है, महान है। और ये तख्त कैसा है? सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। इस तख्त पर बैठने के बाद और किसी तख्त की इच्छा, आसक्ति, आकांक्षा, लालच, लोभ, मोह नहीं रहता। इस तख्त के आगे, तेरे प्यार के आगे, वो तख्त फीका, वो ताज फीका। इस तख्त के आगे संसार का हर वैभव गौण है। और ये तख्त कैसा है? तख्त कैसा है? माँ के दिल जैसा। परमात्मा के हृदय तख्त पर बैठना अर्थात उसका प्रिय बनना। परमात्मा हृदय तख्त पर बैठना अर्थात कौन बैठ सकता है इस तख्त पर? भोलेनाथ के भोले भोले बच्चे, जिनके हृदय में छल कपट है, वो नहीं बैठ सकते। और कौन बैठ सकता है इस तख्त पर? जो सच्चे दिल वाले हैं, साफ दिल वाले हैं। और कौन बैठ सकता है इस तख्त पर? जो ब्राह्मण कुल की लाज रखते हैं। पिछले संडे की मुरली याद है ना? और कौन बैठ सकता है इस तख्त पर? जो बेफिक्र, इस तख्त पर बैठने से बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। और इस तख्त पर वही बैठ सकते हैं वो जो बेफिक्र बादशाह है। निश्चिंत तख्त है ये। और कौन बैठ सकता है इस तख्त पर जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं और जो सर्व आकर्षणों से मुक्त है, संसार की आसक्तियां जिन्हें खींचती नहीं। आज की मुरली में बाबा ने चार कारण बताए हैं, चार कारण जिसके वजह से इस तख्त पर नहीं बैठ सकते। कौन से वो कारण है आज की मुरली से? ये चीजें है। सबसे पहला संस्कार, अधीनता के जहां संस्कार है, डिपेंडेंसी के संस्कार है। यदि ऐसी कोई आत्मा है जो किसी दूसरे पर निर्भर है, वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जहां पर भी अवलंबन है, निर्भरता है, वहां एक सूक्ष्म बंधन है। व्यक्ति उस बंधन में बंधा है क्योंकि दूसरे पर निर्भर है। हमारे पास प्रश्न है, हम ढूंढ रहे हैं कोई तो जवाब दे, शायद उस व्यक्ति पर भी निर्भर है उत्तर के लिए। अभी अभी मुरली चली थी, मालिक और त्याग की एक मुरली चली थी, याद होगी सभी को, 4 तारीख को, और वो मुरली थी 6 तारीख की, 82। कौन सा त्याग किसका? दास पर मुरली चली थी ना, मालिक और दास। उसमें अधीनता पर हमने चर्चा की थी, 6 प्रकार की अधीनता मुरली में नहीं थी, पर हमने उस पर चर्चा की थी। कौन कौन सी अधीनता है? डिपेंडेंसी, सबसे पहली शारीरिक अधीनता, दूसरी आर्थिक अधीनता, तीसरी बौद्धिक अधीनता, चौथा भावनात्मक अधीनता, इमोशनल डिपेंडेंसी, पांचवी आध्यात्मिक अधीनता भी है, एक वो जो सबसे सूक्ष्म है, एक सामाजिक अधीनता है। आध्यात्मिक अधीनता अर्थात जब क्लास होगा तो उसके बाद में नोट्स लिखेंगे, जब भट्टी का प्रोग्राम बनेगा तभी हम योग करेंगे, जब मधुबन जाएंगे तब अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे, किसी को मिलेंगे और उसको प्रश्न का उत्तर पूछेंगे, अपने प्रश्न का, प्रश्न छिपा रखा है मन में, क्या हमारे प्रश्न का उत्तर संसार की कोई आत्मा दे सकती है? कभी नहीं। उत्तर मनुष्य के ही अवचेतन में छिपा है, उत्तर अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आ सकता। जो उत्तर बाहर से आएगा उस उत्तर में और 10 प्रश्न छुपे होंगे, फिर वही चक्र। इसलिए उत्तरों को ढूंढने में व्यक्तियों से अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, ज्ञान चिंतन में समय गंवाना है, गंवाना तो नहीं कहेंगे, समय को सफल करना है, स्वतः ही सारे उत्तर उसमें से आ जाएंगे। तो शारीरिक अधीनता, हर चीज के लिए किसी और पर निर्भर है। बौद्धिक अधीनता, मेरे जीवन के जो भी निर्णय हैं कोई दूसरा ले, मैं ना लूं, क्योंकि मुझ में इतनी सोचने की शक्ति नहीं है, ऐसी यह विचारधारा। बौद्धिक अधीनता, भावनात्मक अधीनता, इमोशनल डिपेंडेंसी, वो क्या है? कोई प्यार से बोले, कोई सम्मान दे, कोई सत्कार करे, कोई प्रशंसा करे, स्तुति करे, कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो, तुम्हारे जैसा तो जीवन और किसी का नहीं, ऐसा दूसरे कहे, प्रशंसा, प्रशंसा की चाह। कौन से न्यूट्रिएंट्स है प्रशंसा में जो इतना चाहते हैं सभी? कौन से प्रोटीन्स और विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें कि जिसके बिना ऐसा लगता है कुपोषण हो रहा है, वो अगर ना मिले तो। भावनात्मक अधीनता, दूसरे मुझे प्यार करे, प्रशंसा करे, मुझे उत्तर दे, यदि मैं प्रश्न भेजू तुरंत उत्तर आना चाहिए। अधीनता जहां है वहां संबंध है, बंधन है, और वहां जहां बंधन है वहां रूठना रूसना है, नाराज होना है, और उसी में जीवन चला जाता है। आर्थिक अधीनता, मांगते रहो दूसरों से, दे दो दे दो दे दो। सामाजिक अधीनता, समाज सम्मान करे, सत्कार करे, समाज से अपेक्षाएं, कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस, ये सब अधीनता है। तो सबसे पहला कारण इस तख्त पर न बैठने देने का कौन सा है? संस्कार। कौन से संस्कार? अधीनता के संस्कार। तीन प्रश्न पूछे हैं बाबा ने, किसने किसको धारण किया है? आत्मा ने संस्कार को धारण किया है या संस्कार ने आत्मा को धारण किया है? चैतन्य शक्तिशाली कौन है, आत्मा है या संस्कार है? कौन किसकी शक्ति है? संस्कार आत्मा की शक्ति है या आत्मा संस्कार की शक्ति है? कैसे पावरफुल प्रश्न है तीनों भी। यदि ऐसा है तो ये क्यों कहते हो कि छूटते नहीं है? छोड़ो तो छूट जाएंगे। पकड़ा किसने है? तुमने ही पकड़ रखा है। आदतें बनी कैसे? यदि किसी संस्कार से, यदि किसी आदत से मुक्त होना है तो उसकी विधि क्या है? सबसे पहले तो ये सोचो वो आदत का स्रोत क्या है, किस आधार से वो बनी, वो उगम स्थान कौन सा था, वो क्या हमने किया, कौन से वो ट्रिगर है जो उस आदत का जिन्होंने पोषण किया है, पालन किया है। मिस्र में एक पुस्तकालय था, ग्रंथालय, लाइब्रेरी, सिकंदरिया, द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उस लाइब्रेरी को जलाया गया था, जैसे भारत में नालंदा को जलाया गया था और वो 6 मास तक जलती रही थी, उसी तरह विदेश में भी क्राइस्ट से ईसा के 300 वर्ष पहले वो बनी थी और 30 वर्ष पहले उसे जलाया गया था। उसमें लगभग 40,000 से 4 लाख तक किताबें थी। वो जब जली उसमें से एक किताब बच गई और वो एक किताब एक गरीब के हाथ में आ गई थी, ऐसी कहानी है। और उस किताब में लिखा था पारस मणि का रहस्य। पारस मणि कहाँ मिलेगा? ऐसा पारस पत्थर जो यदि लोहे को लगा दो तो वो सोना बन जाए। उस व्यक्ति के हाथ में वो किताब पड़ जाती है और वो व्यक्ति उस किताब को पढ़ता है और उसे समझ में आता है कि वो पत्थर है। ब्लैक सी जो है वहां पर, उसका जो किनारा है वहां पर बहुत सारे पत्थर है, उन पत्थरों में एक पत्थर पारस पत्थर है। तुम वहां जाओ तो वो पत्थर तुम्हें मिलेगा। और उसमें और एक चीज लिखी रहती है कि वो तुम पहचानोगे कैसे, तो वो पत्थर जो होता है वो थोड़ा गर्म होगा, बाकी सारे पत्थर समुद्र के किनारे पर जो है, जो साहिल पर पत्थर है, वो सभी ठंडे होंगे। तो वो व्यक्ति इतना आशा से भर जाता है, अपना सब कुछ बेच बाज कर ब्लैक सी के पास पहुंच जाता है और एक युक्ति करता है कि पत्थर लेता है और सोचता है कि जो ठंडा है अगर मैं नीचे फेंक दूं तो फिर से मैं उसी को उठाऊंगा, तो क्यों ना मैं जो पत्थर ठंडा है उसे समुद्र में फेंकूं। सुबह से लेकर सांझ तक वहां बैठता है, पत्थर उठाता है, ठंडा है, फेंक देता है, क्योंकि कसौटी थी कि जो पत्थर गर्म है वह पारस पत्थर होगा। तो पूरा दिन बिताता है, नहीं मिलता है, परंतु हिम्मत नहीं हारता, उठाते रहता है। एक हफ्ता गुजरता है, हिम्मत नहीं हारता है, उठाते रहता है, वहीं पर घर बना लेता है समुद्र के तट पर। 6 मास गुजर जाते हैं, हारता नहीं है। 1 साल गुजर जाता है, हारता नहीं है। 2 साल गुजर जाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं, सुबह से लेकर सांझ तक एक ही काम, पत्थर को उठाना, ठंडा है और फेंक दिया, पत्थर को उठाया, ठंडा है और फेंक दिया, क्योंकि उसे तलाश थी पारस पत्थर की जो कि गर्म हो। और 3 साल के बाद एक दिन ऐसे ही पत्थर उठाता है जो कि गर्म है और उसे पता है ये पारस पत्थर है, परंतु फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? और फिर पश्चाताप और फिर प्रायश्चित, अरे रे क्या कर दिया मैंने, जिसके लिए 3 साल गवाए, सुबह से लेकर इतना अथक उद्यम किया और वो क्या हो गया, आज समुद्र में चला गया। क्यों? मेरी आदत, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार बनाए कैसे, क्या किया, दोहराओ। हमारे संस्कार कैसे कैसे बने हैं? रिपीटिशन, बार बार पुनरुक्ति की है। पहले दिन कठिन मालूम पड़ा उसको, लगा छोड़ दू, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परंतु लगा रहा और फिर फेंकने का संस्कार बन गया, तो हाथ में जो भी आया उसे फेंक दिया। पुनरुक्ति, यदि पुरानी आदतें इस तरह से बनी है तो नई आदतों का भी निर्माण किया जा सकता है। कौन सी आदतें बनाएंगे? ईश्वरीय जीवन की नई आदतें। कौन कौन सी आदतें? ज्ञान चिंतन की आदत। अभी अभी थोड़ी देर पहले जहां मुरली लगी हुई होती है पांडव भवन में, डाइनिंग में, एक भाई बैठे थे, कह रहे थे इतनी बड़ी मुरली कैसे करे इसका चिंतन। वो तो बोर्ड पर लिखी हुई है, इससे तो चार पेज की है, कहां से शुरू करे और कहां से चिंतन करे, कैसा चिंतन और क्या चिंतन, ये चिंतन क्या होता है, किस खेत की है ये मूली और कहां मिलती है और कैसे करे, कितनी मूली आई और चली गई, और सब कहते हैं चिंतन करो चिंतन करो चिंतन करो चिंतन करो। अरे कहां से करे चिंतन? चिंतन तो लिखा तो है बाबा ने, जो लिख दिया उसमें और चिंतन की क्या आवश्यकता है, वो बहुत है, पूर्ण है वो। किसकी आदत डालनी है? चिंतन की, ज्ञान चिंतन की, ज्ञान मनन की, ज्ञान अध्ययन की, ज्ञान चर्चा की, ज्ञान पढ़ने की, ज्ञान पढ़ाने की, ज्ञान सुनने की, ज्ञान सुनाने की, अनुभव करने की, स्वरूप में लाने की, प्रयोग करने की, तो ही ज्ञान बल देगा, तो ही ज्ञान शक्ति भरेगा, नहीं तो कितनी मुरलियां आई और चली गई, हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ हमारे खाली है। तो नई आदतों का निर्माण करना है, ये एक आदत सबको डालनी है। रोज एक टॉपिक लेना, लिखना, रोज एक टॉपिक पर डिस्कस करना, सोचना, उसका विस्तार करना, उस पर मनन करना, हर तरह से उसके बारे में सोचना, और पुरानी आदतें जिन्हें छोड़ना है उनका जो ट्रिगर्स है वो उनको समाप्त करना है, हेल्दी हैबिट्स निर्माण करने हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। ऐसी आध्यात्मिक आदतें, आध्यात्मिक संस्कार। तो सबसे पहला कारण जो है इस तख्त पर न बैठने का कौन सा बताया बाबा ने? संस्कार, अधीनता के संस्कार, किसी पर निर्भर नहीं। इस मार्ग में सब अकेले हैं, कोई किसी का साथी नहीं। अगर साथी बनाने का प्रयत्न किया तो वो बोझ होगा। पुरुषार्थ में एकांगी पगडंडी है, एकला चालो रे मंत्र है, अकेले ही चलना है इस पर, और उसी में साहस है, उसी में खुशी है, उसी में आनंद है, उसी में आत्मा में बल भरता है। तो पहला कारण था अधीनता के संस्कार। यदि है, यदि किसी भी प्रकार की अधीनता है, उसे नष्ट करना है, समाप्त कर देना है। कोई हमारा साथी नहीं है यहां, ना ही बन सकता है। एक दूसरा कारण स्वभाव, संस्कार, आदत, ये सब हो गया। दूसरा कारण जिस वजह से इस तख्त पर नहीं बैठ सकते, हिम्मत की कमी। क्या कहा बाबा ने? हिम्मत नहीं है आत्माओं में इस तख्त पर बैठने की, हिम्मत की कमी है। अब प्रश्न है सभी से कि हिम्मत की कमी क्यों है? यह चिंतन का दूसरा बिंदु है। बैठना सभी चाहते हैं परंतु बैठ नहीं पाते हैं, तो आत्मा में हिम्मत, साहस, करेज क्यों कम है? विश्वास की ही कमी क्यों है? पहचान तो है बाप की, पहचान कम है। अच्छा, और साहस क्यों कम है, क्यों डर लगता है? शायद डर भी है, साहस कम है। डर कब लगता है? जब अपरिचित होते ये मंजिल तब। ज्ञान, साहस की कमी, हिम्मत की कमी क्यों है, प्रश्न ये है। स्वयं को, स्वयं पर विश्वास नहीं है। अच्छा, प्रश्न वही है, एक बल एक भरोसा नहीं है क्यों? प्राप्ति पर विश्वास नहीं है क्यों? हाँ, एक कारण है, बार बार असफल हुए, बहुत बार चढ़ने की कोशिश की है परंतु क्या हुआ, गिरे है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। परंतु यहाँ बार बार कोशिश करने की वजह से क्या हो गया है, हिम्मत कम हो गई है। अब नहीं लगता है कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ हम कर पाएंगे। तो एक तो बार बार असफलता जब हो जाती है तब हिम्मत कम हो जाती है, और बार बार ठंडे पत्थर बार बार हाथ में आ रहे हैं। और चाहे जो मिला नहीं उसे पालेने की धुन, मेरी कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। तो वैसी चाह चाहिए, बैठने की इच्छा, हिम्मत कम है, इसका अर्थ लक्ष्य कमी है, इतनी इच्छा नहीं है वहां बैठने की, और भी कहीं कहीं और बैठना है, वो ऑप्शनल है, एक पैर इधर एक पैर उधर, एक नाव में तो क्या हो जाएगा, चीर जाएंगे। अभी मुरली चली थी, एक साकार, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बाप के साथ ठगी, लास्ट संडे की मुरली, 3 महावाक्य होशियार आत्माओं के, करना पड़ता है। मैंने नहीं चाह, इच्छा नहीं है, परंतु किसी को खुश करने के लिए किया, कौन देखता है? बाप तो जानी जाननहार है नहीं, ऐसा बाप कहते हैं, और जो निमित्त आत्मा है सेंटर्स पर, उनको क्या पता। अच्छे सेवादारी का टाइटल खरीद लेते हैं, अंदर एक बाहर दूसरे, होशियारी, याद है ना पिछले संडे की मुरली, नामी ग्रामी बन जाते हैं यहां पर। और हिम्मत की कमी का कारण जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो हम नाम लेंगे, संतोष भाई, विठल भाई, संजय भाई, दिलीप भाई, फटाफट, मनी भाई, हिम्मत कम होने का कारण आशीष भाई, दृढ़ता की कम, योग कमजोर है, और एक कारण है पवित्रता की कमी, पवित्रता का बार बार खंडन हो रहा है, शक्ति कम हो रही है, हिम्मत हार रही है आत्मा। दूसरा, विकर्मों का बोझ ज्यादा है, कर्म बंधन ज्यादा है, स्वयं निर्मित बंधन बहुत सारे हैं, कैसे चढ़ेंगे उधर, आसक्तियां बहुत सारी है, लगाव बहुत सारे हैं, नए नए लगाव नित दिन प्रकट हो रहे हैं, जो थे नहीं पहले आज आ गए, कैसे हिम्मत आएगी। विकर्म हो रहे हैं, अब भी पाप हो रहे हैं, सूक्ष्म पाप, सूक्ष्म पापों में बढ़ोतरी है, अब भी श्रीमत मन्मत और परमत अलग अलग छाट नहीं पा रहे हैं। इसलिए हिम्मत कम है, दूसरा कारण। तीसरा कारण, उसकी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, शुरुआत ही वहां से की थी, सौदा, इस तख्त पर बैठने के लिए सौदा करना पड़ेगा, दो तो मिलेगा, पूरा नहीं दे रहे, पकड़ा है चीजों को, पूरा दो तो पूरा मिलेगा, आधा दो तो आधा मिलेगा, टुकड़े दो तो टुकड़े मिलेंगे, टुकड़ों में मिलेगा, थोड़ा थोड़ा दोगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, धक से दोगे तो धक से मिलेगा। एक सेकंड का आधार है सदा। एक सेकंड ही आधार है, एक सेकंड में ही कमानधारी तो एक सेकंड में ही मुरलीधर, विजय तो हार। तो ये था तीसरा कारण, क्या करना है उसे दे देना है। देंगे सभी कि थोड़ा रखेंगे या डर है? दे दिया और नहीं मिला तो? यहां दे दो, यहां ठगी नहीं हो सकती। इस तख्त पर बैठना है तो देना पड़ेगा। बाबा ने कहा है बहुत सस्ता सौदा है, परंतु इतना सस्ता भी नहीं है। सर्वस्व दो तो सब कुछ मिलेगा। थोड़े से वो संतुष्ट नहीं होता है, उसे सब चाहिए। चौथा कारण, जो ये बताएगा उसे इनाम। पहले इनाम चौथा कारण। पहला कारण बताया कौन सा? संस्कार, अधीनता के संस्कार है तो इस तख्त पर नहीं बैठ सकेंगे। दूसरा कारण, हिम्मत की कमी है तो इस तख्त पर नहीं बैठ सकेंगे। तीसरा कारण, दिया नहीं है सबको, आधा दिया है, एक पैर इधर एक पैर उधर रखा है। संसार भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों की कामना है। चौथा कारण, उल्हाने, कंप्लेंट्स। ये कारण था, ये परिस्थिति थी। पहले आ गए होते तो शायद बैठ गए होते। बाबा ने बहुत सूक्ष्म और सुंदर बात कही है, उल्हाने और कंप्लेंट्स का कारण क्या है? तुम्हारी अपनी कमजोरी। कंप्लेंट्स का कारण क्या है? हमारे हृदय में अब भी बहुत सारी कंप्लेंट्स है, सभी के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, स्थान के प्रति, भोजन के प्रति, हर चीज के प्रति, मौसम के प्रति। अभी जाना था सेंटर और बारिश आ गई, कोई भी साथ नहीं देता है। कंप्लेंट बॉक्स, हृदय अर्थात कंप्लेंट बॉक्स खोलो तो कंप्लेंट ही निकलती है। शायद माफ नहीं किया है आत्माओं को, शायद माफी मांगी नहीं है, शायद धन्यवाद दिया नहीं है, इसलिए कंप्लेंट्स है। योग अर्थात कंप्लेंट योगा है। बाबा के सामने बैठते ही पेंडोरास पिटारा खुलता है, बॉक्स, वो मंजूषा खुलती है और उसमें से कंप्लेंट निकलते जाती है बाबा के सामने। एक घंटा तक, एक घंटे के बाद योग पूरा, आज अच्छा अनुभव हुआ, बाकियों को सुनाते हैं। फिर कंप्लेंट्स। तो ये चार कारण है। और एक चीज बाबा ने कही, ये गुरु शिष्य का संबंध नहीं है, मास्टर एंड डिसाइपल रिलेशनशिप MAD मैड परंपरा को भगवान ने बंद कर दिया है। मास्टर एंड डिसाइपल, ये वो नहीं है। तख्त यहां किसी को गद्दी नशीन ऐसा नहीं बनाते हैं। और एक बात कही है, तुम कौन हो? मालिक हो, गुलाम नहीं। यदि कोई स्वयं को मालिक कहता है और कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता और अधिकार ले नहीं सकता, तो कौन कहेगा मालिक? मैं कौन हूं? आत्मा मालिक हूं। मालिक अर्थात सब कुछ करने वाली, मालिक अर्थात परिवर्तन करने वाली, मालिक अर्थात सारे अधिकार लेने वाली। ये तीन बातें बताई है मालिकपन की। तो क्या मैं मालिक हूं या अधीन हूं या कमजोर हूं या गुलाम हूं? ये एक दूसरी पॉइंट थी। उसके बाद टीचर से मुलाकात, क्या कहा बाबा ने उनको? सच्चे सेवाधारी अर्थात चार पांच बातें कही है। सबसे पहला त्याग, त्याग की परिभाषा जो मोल्ड हो जाए और जो इजी रहे। कब कब मोल्ड हो जाए? स्वकल्याण विश्व कल्याण कब कब मोल्ड हो जाए? जैसी परिस्थिति हो, जैसे व्यक्ति हो, जैसी समस्याएं हो, जैसा स्थान हो, उस अनुसार अगर त्याग करना पड़े तो नाम का भी त्याग कर दे, किसी व्यर्थ संकल्प का, संस्कार का त्याग करना पड़े तो कर दे। तो त्याग की परिभाषा क्या कही? इजी और दूसरा मोल्ड, स्वयं को मोल्ड कर लेना परिस्थिति अनुसार फटाफट। कंप्लेन करते नहीं बैठना, इंटरनेशनल योग है, हम लोग घर पर है, अभी सेंटर निकलने ही वाले हैं, तीसरा रविवार है, 6:30 बजने को 5 मिनट है और घर में मेहमान आ गए, अब क्या करेंगे बताओ? क्या उनसे कहेंगे हटो हमको जाना है? क्या करेंगे माताएं बताओ? अभी सेंटर निकलने ही वाले थे बस कि घर में मेहमान आ गए। वो बाहर के हैं, ज्ञान में चलने वाले नहीं है, परंतु संबंध संपर्क वाले हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत समय के बाद आए हैं, और हमने ही बुलाया था आओ 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 और आज आ गए, तो अब क्या करेंगे? क्या समझ के? भगवान समझकर सेवा। अब यहां स्वयं को तुरंत मोल्ड कर लेना है। दो विकल्प है, एक तो घुट घुट के, मरमर के, गालियां देते के अंदर ही अंदर कोसते कोसते घर में रहना, उनके लिए सब कुछ बनाना और ये सोचना कि कब ये जाए, एक तो ये मार्ग है। दूसरा मार्ग है अब समझना, अब हमको यही योग करना है, अब इनके लिए ऐसा योग युक्त तो होके कुछ बना देंगे नाश्ता वगैरह कि थर्ड संडे यही आ जाए, इधर सेंटर पर पहुंच जाए। तो स्वयं को मोल्ड कर लेना, स्वयं को चेंज कर लेना। अगर कुछ त्याग करना है संस्कार का, संकल्प का, साधन का, अल्पकाल के साधन का, चार चीजें बाबा ने कही है मुरली में, तो कर दो। ये है त्याग की परिभाषा। त्याग पर तो सीरीज चलाई है बाबा ने, तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे जो त्यागी और तपस्वी मूर्त है वही सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उस त्याग का भी अभिमान ना हो, मैंने त्याग किया, ये त्याग किए, ऐसे ऐसे त्याग किए। एक दूसरा, यदि कोई डायरेक्शन मिले तो क्या करो? हाँ जी जी हाजिर। उसमें फिर ये नहीं समझो, क्या नहीं समझो, क्या नहीं समझो, मैं नीचा हो गया, मैं छोटा हो गया, मुझे झुकना पड़ा, पर्सनैलिटी कम हो गई, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे, लोगों ने तो ये समझा कि इसकी हार हो गई। जो सेवा मिल जाए उसे आज्ञाकारी बनकर करना, अर्थात बाप के प्यारे बनना। जो भी डायरेक्शन मिल जाए उसे ये नहीं समझो कि कोई व्यक्ति दे रहा है या किसी सेवा केंद्र से आ रहा है, समझो सीधा परमात्मा से अवतरित हो रहा है वो डायरेक्शन। इसमें ही कल्याण समाया है, ऊपर से दिख रहा है अकल्याण है, परंतु शायद उसी में कल्याण है। विदेश में पाश्चात्य जगत में कहानी है तिलोपा की। तिलोपा जो था वो अपने गुरु के आश्रम में गया, उसके गुरु ने कहा जाओ जाकर तिल कूटो, यही तुम्हारी आज से सेवा है। उसने कहा मैं तिल कूटने, उसने कुछ कहा नहीं, परंतु बाकियों ने सोचा अरे ये बेचारा नया साधक है, आध्यात्मिक ज्ञान और उन्नति के लिए आया है और इसे ये क्या सेवा दे दी गई। उस आश्रम में लगभग कितने हजार सन्यासी थे, उसे एक सेवा दे दी गई तिल कूटने की। सुबह से लेकर रात तक ना तो ज्ञान की चर्चा, ना तो कोई प्रवचन वो सुनता, कुछ नहीं, सुबह से लेकर रात तक बस उसी एक कमरे में उसको एक ही सेवा। कितने सालों तक वो वही करता रहा, उसने कभी कोई ज्ञान नहीं सुना, परंतु वो करते करते ही उसकी चेतना जागृत हो गई वहां पर। और जब उसके गुरु की मृत्यु करीब थी और किसी को उत्तराधिकारी बनाना था, तो उसको बुलाया गया और उसको उत्तराधिकारी बनाया गया। एक ही सेवा जो उसके मिली वही अनन्य भाव से करता गया। किसने दी है? गुरु ने दी है इसी भाव से, बिना ये सोचे कि बाकी सारे सन्यासी तो जा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। उसका भाव था कि मुझे ये सेवा दी गई, उसका नाम ही बाद में तिलोपा पड़ा। जो सेवा दी गई है ये समझना कि ये स्वयं भगवान से दी, भगवान ने दिए। क्या कोई व्यक्ति हमें सेवा दे रहा है? यहां पर जो हम आए हैं किसी व्यक्ति ने लाया? किसने लाया? उसकी आवाज, उसने लाया है हमको। चाहे किसी भी महकमे में, किसी भी डिपार्टमेंट में हम सेवा कर रहे हैं, यही समझना है। किसी भी स्थान पे, किसी भी सेवा केंद्र पर, इस पृथ्वी पर, कहीं पर भी यही भाव हो, ये उसकी सेवा है, वो करा रहा है। और ये नहीं कि ये सेवा ज्यादा अच्छी है, दूसरों की सेवा, हर एक को लगता है कि उसको कम सेवा है, उसके पास टाइम ज्यादा है, उसका स्थान अच्छा है, वो सेंटर अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो सेवा जिस स्थान पर जो डायरेक्शन मिले है उसे फौरन अमल करना, यह है सच्चे सेवाधारी। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है, सबको क्या किया? आगे किया। ये मेरे से अच्छे भाषण करते हैं, सबको आगे किया, पांव दबाए। दूसरों को आगे करना ही आगे जाना है। ये हद के मान शान के क्या करोगे? मानना ही माननीय बनना है, और मान देना ही सम्मान लेना है। कितना सुंदर महावाक्य है। ऐसे मुरली के कुछ कुछ महावाक्य याद कर लेने हैं सभी को, केवल पढ़ के छोड़ नहीं देना है। कुछ कुछ बातें ऐसी आती है कि उन्हें पकड़ लेना है, कहीं पर नोट करके रखो बड़े अक्षरों में, और तब तक उन्हें पुनरुक्ति करते रहो, उनको पढ़ते रहो, जब तक वो चेतना के मानस पटल पर अंकित ना हो जाए, मिटे ना, फिर इतनी गहराई से अंकित हो जाए जैसे आसमान पर अग्नि से कोई शब्द लिखा हो, उस तरह आत्मा पर वो शब्द लिखे हो। उसके बाद क्या कहा बाबा ने? गुजरात कल्याणी हो या विश्व कल्याणी हो, क्या समझना है स्वयं को? सकल विश्व के कल्याणी, किसी एक स्थान के, एक राष्ट्र के, एक सेंटर के, एक 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 छोटे से स्थान के नहीं, परंतु हम विश्व के हैं। उसके बाद में बात कही एवर रेडी की, और एक चीज कही, उपराम, ऑफर करो तो उपराम हो जाओगे, लगाव झुकाव से ऊपर रहोगे। ये दो साधनाएं हमेशा हरेक को करनी है, एक तो साक्षी भाव की और दूसरा उपराम स्थिति। उपराम अर्थात सबसे ऊपर, सबसे परे, बाकी सारी चीजें नीचे, यहां के किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं। उनकी नाव खड़ी है, शूद्रों की नाव खड़ी है, तुम्हारी नाव चल पड़ी है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। हमेशा ये समझना कि मैं उपराम हूं, सबसे परे, बाकी सारी चीजें नीचे रह गई है। इस भाव का दिन में कम से कम दो बार अभ्यास करना है, एक सुबह और एक शाम, साक्षी होकर सब कुछ देखना है, स्वयं को भी देखना है, स्वयं की बातों को, चीजों को, सब कुछ साक्षी होकर देखना। तो इस दिल तख्त पर बैठने वाले कौन कौन है? जिनमें जो त्यागी है और जो तपस्वी है और जो आज्ञाकारी है और जो उपराम है और जो एवर रेडी है और जो विश्व कल्याणकारी है, वो ही इस दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। अच्छा, ऐसे अधिकारी, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे दिल तख्त नशीन, ऐसे सर्व अधिकारी बच्चों को, ऐसे सेकंड के सौदा अर्थात सेकंड का सौदा अर्थात तुरंत देना और लेना, ऐसे श्रेष्ठ हिम्मतवान आत्माओं को, ऐसे मालिक बन, परिवर्तन की शक्ति से अपनी सर्व कमजोरियों को मिटाने वाले, ऐसे जो श्रेष्ठ कर्म करना चाहो वो श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।